ओम शांति। सभी ठीक है? मधुबन में पहुंच गए तो जैसे लगता है कि बाबा की गोद में आ गए ना। कोई भी फिक्र है क्या? हाँ नहीं है ना, छोड़ दिया ना। हाँ घर गृहस्थ का फिक्र है, बिजनेस का धंधा का फिक्र है, नहीं है ना। ये खूबी है इस धरनी की कि जैसे हम बाप की गोद में पहुंच जाते हैं, हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। हाँ एकदम बेफिक्र बाबा बैठे हैं ना। इतना सुंदर गीत था, चलते चल। मान शान छोड़, झूठा अभिमान छोड़, लाइफ में सिंप्लिसिटी आती है जब हम झूठे पनी को छोड़ते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है ना, ज्यादा बोलता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझो कुछ दाल में काला है। जो व्यक्ति क्लीन हार्टेड है, सच्चे दिल वाला है, बहुत सिंपल है वो व्यक्ति, जैसी है वैसी बात बताएंगे। कुछ छिपाने की दरकार नहीं है, कुछ झूठ बोलने की दरकार नहीं है। उसका पूरा विश्वास रहेगा कि विजय सत्यता में है। आज हम सोच रहे थे, दो तीन दिन से हमारा चिंतन चला है ईश्वरीय स्नेह के ऊपर। हम सोचते हैं कि जैसे हम यहां बैठे हैं, हम खुद अपने पुरुषार्थ से बैठे हैं, ठीक है। चलो स्थूल रूप में तो आप घर छोड़ के यहां आए हैं, स्थूल रूप से पुरुषार्थ किया है, लेकिन आपके पीछे कितने मददगार हैं आपके जीवन में, जिनके गुड विशेस और प्यार के आधार से आप यहां बैठे हो आज। तो ईश्वर का एक अनोखा प्यार है, सच्चा है, अनादि है, अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? क्योंकि इसका कोई शरीर नहीं है। जो चीज विनाशी होती है वो सदाकाल के लिए नहीं रह सकती है। तो स्थूल रूप में प्यार करना माना दिल का टुकड़ा टुकड़ा होना, क्योंकि रूप बदलता है ना। एक दिन तो ये रूप है, दूसरे दिन शरीर छोड़, आत्मा शरीर से निकल जाती तो ये रूप कौन सा बन जाता है? राख बन जाता है। क्या राख के साथ कोई मोह लगेगा, प्यार होगा? तो ऐसे लगता है दिल टूट गया। तो कितने जन्मों से देह के प्यार से हमने धोखा खाया है, क्योंकि नाम रूप का प्यार है, बदलता रहता है। जिस रूप में हमको चाहिए उस रूप में स्थाई नहीं रहता है, राइट? तो ईश्वरीय स्नेह जो भी दिल के टुकड़े हैं, पूरा एक के साथ कनेक्ट करते हैं, एक बन जाता है दिल, क्योंकि ईश्वर अनादि है, अविनाशी है और सदा के लिए हमारा माँ है, बाप है, सखा है, फ्रेंड है। तो ईश्वर ने अपने तरफ से हमारे साथ संबंध निभाया है और निभा रहा है। जब भी बच्चा परेशान होता है तो मम्मी या पापा बोलता है तो तुरंत कोई में से एक तो आ जाता है ना। तो बाबा भी ऐसा है, दिल का आवाज बाबा को पहुंचता है, बाबा रिस्पॉन्ड देता है, या किसी ने किसी को निमित्त बना के मदद पहुंचाता है आपको। तो बाबा ने केवल एक जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, लेकिन सारे कल्प के लिए संबंध निभाता है बच्चों के साथ। तो मैं सोच रही थी, अपने लिए सोच रही थी कि बाबा आपने जितना हमको प्यार दिया है, चाहे डायरेक्ट मिला है आपसे, चाहे आपने जो दादियों को दिया है उनसे हमको जो मिला है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जीवन में, जीवन की जो माना फलीभूत हुई है, ये प्यार और गुरुशिष के कारण से। विशेषताओं की बीज तो होती है हर व्यक्ति में, लेकिन जब तक प्यार का पानी नहीं डालते हैं तो वो विशेषता प्रकट नहीं होती है। तो हमारी जब विशेषता प्रत्यक्ष होती है, उस समय माया हमको धोखा देती है, देखना तेरी विशेषता कैसी है, तू कैसी हो, कितनी अच्छी हो, ये नहीं दिखाई देता है कि किसी ने प्यार का पानी डाला है, तब तो जा करके वो विशेषता खिल गई है ना। तो ये जो स्मृति रहती है कि सारी दुनिया सर्व आत्माओं की उन्नति एक स्नेह से चल रही है, गुड विशेष से चल रही है, तो इसमें अभिमान आने की क्या बात है। जब आप रियली स्नेह को समझते हैं तो आपके दिल में थैंक्स बहुत निकलता है, अप्रिशिएशन बहुत निकलता है, थैंक यू बाबा। हर चीज में आपको जैसे भाग्य लगता है, मेहनत नहीं लगती है, हर बात एक भाग्य है, मेरा भाग्य है मुझे चांस मिला, भाग्य है ये चांस मिला। जो हद का त्याग है वो त्याग महसूस नहीं होता है, भाग्य महसूस होता है ना। सभी का ये अनुभव है ना, नहीं? कहेंगे आपने कुछ त्याग किया है, छीछी चीज को कहेंगे त्याग किया है, नहीं किया है ना? तो ईश्वरीय स्नेह हमको एक इजी योगी बना देती है, कर्म योगी बना देती है और नेचुरल योगी बना देती है। क्योंकि ईश्वरीय स्नेह का जो अटूट अविनाशी संबंध है, उसके आधार से एक भावना बनी रहती है दिल में, एक रिगार्ड की भावना, सभी का भले की भावना, रहम की भावना। ये है प्रूफ कि ईश्वरीय स्नेह आपके लाइफ में काम कर रही है। आपका दिल सेंसिटिव नहीं रहेगा, नरम रहेगा, सेंसिटिव नहीं बनेगा। जिसका दिल नाजुक है, देहभान बहुत है, छोटी छोटी बातों में अपसेट या रोने आता है, इमोशनल हो जाते हैं जल्दी, माना अभी देह का रग छूटा नहीं है। ईश्वरीय स्नेह तूफान को भी एक तोहफा समझता है, जब ईश्वरीय स्नेह होता है ना, तो आपको सभी की भावनाएं और पुरुषार्थ दिखाई देती है। क्योंकि प्यार ये चीजों को देखती है। अभी आप कई लोग यहां पे चश्मे पहने हैं, ठीक है, थीके? जो कलर का चश्मा पहनेंगे उसी कलर का सब कुछ दिखाई देगा ना। तो जब ईश्वरीय स्नेह के चश्मे पहनते हैं तो बहुत कुछ सूक्ष्म चीजें दिखाई देती हैं। मुझे याद है हम एक बारी लंदन में थे और साउथ लंदन में एक सेंटर है हमारा, तो वहां पे पब्लिक प्रोग्राम था। तो उस पब्लिक प्रोग्राम में काफी लोग आए थे, लेकिन हमने जैसे शुरू किया प्रोग्राम तो थोड़ा 10 मिनट के बाद एक भाई आया, लंबा सा भाई था और बिल्कुल पीछे से आकर के सीधा आगे आकर के एक कुर्सी थी आगे वहां आकर के बैठा। और जैसे बैठा मेरे तरफ तो देखा नहीं, उसने अपना नोटबुक पेन निकाल के लिखना शुरू किया। तो जैसे मैं बोलू वैसे वो लिखा। मैं सोच रही तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा मुंह तो दिखाई देवे। तो चलो प्रोग्राम पूरा हुआ, टॉक पूरा हुआ, लेक्चर पूरा हुआ, उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर का 10 मिनट का टाइम था। तो फिर हमने पूछा किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो यही भाई ने हाथ ऊंचा किया। मैंने बोला भाई ठीक है पूछो क्या है प्रश्न। कहता है मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके लेक्चर से जो अयथार्थ शब्द थे मैंने उसका लिस्ट बनाया है, और उसके कंपैरिजन में जो रियल शब्द आपको यूज करने चाहिए थे उसका भी मैंने लिस्ट बनाया है, तो मैं आपको सुनाऊं क्या। मैं बहुत सुनाऊं। तो फिर पढ़ने लगा, ये शब्द ठीक नहीं था, इसके बदले आप ये शब्द यूज करते तो ये बेहतर था, ये शब्द ठीक नहीं था, इसके बदले ये शब्द, जिस बात से आपने ऐसी बात बताई ऐसी बात बताते तो ये बेहतर था। तो ऐसे करके करके एक मिनट गया, 2 मिनट गया, मैं तो साक्षी होकर के देख रही हूं ये खेल, ये क्या है। फिर 3रे मिनट पे मुझे ये महसूस हुआ कि थोड़ा संगठन थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा है, तो मैंने जल्दी बाबा को आह्वान किया। मैंने बोला बाबा ये आपका बच्चा है, इसको जो चाहिए दे दो। और जैसे मैंने बाबा का आह्वान किया तो मिड सेंटेंस उसने पूरा किया, आधे सेंटेंस में ठीक है मैंने इनफ बोल दिया। और उस समय मेरे दिल में इस आत्मा के लिए इतना प्यार, मैंने बोला कौन मेरे लेक्चर में इतना पुरुषार्थ करता है, आपने इतनी मेहनत की, मैं आपको बहुत थैंक्स देती हूं, थैंक यू, आप बाद में फिर आपका नोट्स दे देना, मैं स्टडी कर लूंगी। ये बाबा की याद की कमाल है। बाबा को ना आह्वान करके फिर क्या होता है, आपका देहभान टच होता है, आपकी सेंसिटिव बटन टच होती है, आपका अभिमान टच होता है। टच होता है फिर कौन से सोच चलते हैं, अरे क्या है ये, क्या बोल रहा है, इसको क्या पता है किसके सामने बोल रहा है, देखा ना। लेकिन ये आत्मा वंडरफुल जो है, जैसी है, इतनी मेहनत तो की ना हमारे लेक्चर पे, ध्यान से तो सुना, नोट तो लिया, तो पुरुषार्थ को भी आप थैंक यू करो ना। तो प्यार ईश्वरीय स्नेह ये चीजें देखता है, भावना को देखती है, रोल को नहीं देखती है। भावनाएं बनी रहे संबंध में, जिसके पास ये ईश्वर स्नेह का रस है उसका ये बहुत अटेंशन रहता है कि भावनाएं बनी रहे संबंध में, भावनाएं कोई भी व्यक्ति के प्रति टूटे नहीं। और आपको कुछ भी करना है, उस व्यक्ति को हल्का भी कर लेना है, भले उसकी भी गलती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भावनाएं तो बनी रहे ना। उसको ऐसे अंदर तो महसूस होना कि मेरे लिए कोई है, भर में कैसा हूं वैसा हो मेरे लिए कोई है ना, ये एक व्यक्ति है जो मुझे तिरस्कार नहीं करता है। कितनी दिल की दुआएं निकलती है उस व्यक्ति के लिए। तो ईश्वरीय स्नेह को प्राप्त करने के लिए वृत्ति में बहुत शुद्धता चाहिए। हमने अनेक प्रकार की वृत्तियां बना के रखी है, इसके प्रति एक वृत्ति, इसके प्रति एक वृत्ति, इसके प्रति एक वृत्ति। क्यों? इसकी बात पकड़ के बैठे हैं, इसकी बात पकड़ के बैठे हैं, वो परिस्थिति की बात पकड़ के बैठे हैं। तो वृत्तियों को साफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संबंध में हमको प्यार, रूहानी प्यार महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वृत्ति में, स्मृति में गंदगी है। आप अपनी गंदगी को नहीं देख सकते हैं, अपने रविश को नहीं देख सकते, दूसरे की रविश देखते हैं। तो क्लेनलीनेस इज द फाउंडेशन ऑफ प्योर लव। और मैंने देखा, मुझे याद है कि जब किसी का नियत साफ होता है ना, उसको तुरंत कोई व्यक्ति के वाइब्रेशन महसूस होते कि ये ठीक नहीं है, इसको कुछ देवे ठीक हो जाए, हल्का हो जावे, लाइट हो जावे। हमने ये दादी जानकी में बहुत देखा है, बिना शब्द से दादी को पता चलता था चेहरे से। दादी हमको कहती थी कम से कम 5-6 बारी मेरे सामने आना चाहिए दिन में, ताकि मैं तेरा मुंह देखूं। मुंह से, चेहरे से सब कुछ पता चलता था दादी को, इसकी अवस्था कैसी है, दृष्टि कैसी है। तो एक दफा क्या हुआ, जब शुरुआत हुआ था रिट्रीट सेंटर का ऑक्सफोर्ड में, जो हमारा जीआरसी है, तो वहां पे तो हमारी रिट्रीट लगातार, वो तो पहला रिट्रीट सेंटर था, उस हमारे पास कोई मॉडल नहीं था किस तरीके से रिट्रीट सेंटर को चल, बहुत रिट्रीट होते थे, फ्राइडे टू संडे, ट्यूसडे टू थर्सडे, फिर फ्राइडे टू संडे, लगातार होते थे, और वो 100-150 लोग आते थे। तो कभी कभी थकान बहुत होती थी, बीच में आधा घंटा 40 मिनट गैप मिलता था। तो एक दिन मुझे ऐसे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मेरे पास आधा घंटा है, मैं जाके लेट जाती हूँ कमरे में, रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा आधा घंटा। लेकिन हमारे कमरे में पहुंचने तक मुझे दादी का कमरा पास करना था। अभी दादी का दरवाजा ऑलवेज खुला होता है, और वो दिन में 11 बजे मैं अपने कमरे में जा रही हूं, तो वो कमरा पास करना, तो मुझे पता है दादी देखेंगी फिर पूछेंगी। तो मैं जब वहां पहुंची, उस कॉरिडोर में पहुंची, तो मैंने आवाज सुना कि कोई ग्रुप बैठा है दादी के साथ। तो मैंने सोचा ये तो ठीक है, तो दादी मुझे देखेंगी नहीं। तो मैं जल्दी 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 ऐसे स्पीड पे लगा करके पूरी कॉरिडोर के दूसरे दरवाजे तक पहुंची, और जैसे मैंने दरवाजे पे हाथ लगाया, मैंने आवाज सुना, गोपी इधर आओ। ओ ठीक है, चलो गया मेरा रेस्ट। मैं गई अंदर कमरे में, तो एक सिंधी परिवार बैठा था दादी के पास। तो दादी ने मुझे इधर बिठाया, इधर बाजू में, और मैं बैठ गई, और मेरी मन बुद्धि तो मेरे बिस्तर में है। दादी ने मुझे यहाँ बिठा दिया, और दादी बोलने लगी, सिंधी में बोला, आधा हिंदी आधा सिंधी। 10 मिनट के लिए मैं बैठी रही। तो दादी ने क्यों ऐसे बिठाया है मुझे, मेरे पास अभी और 20 मिनट ही है। चलो फिर बुद्धि बंद करके बैठ गई। फिर 10 मिनट के बाद पूरा किया, बोलते ठीक है टोली लेके आओ, ब्लेसिंग लेके आओ। तो फिर परिवार निकल गया वहां से, कमरे से। तो दादी ऐसे देखा मुझे, कहती है आप ठीक हो? मैंने दादी को देखा, आपको कैसे पता चला दादी कि मैं ठीक नहीं हूं? तुम जिस तरीके से पैदल कर रही थी, दादी को वाइब्रेशन पहुंचा। ठीक है, हाँ दादी मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैंने सोचा मैं जाके लेट जाऊं। अच्छा तुमको पता है दादी ने क्यों तुमको बुलाया? नहीं दादी, तुमको हल्का करने के लिए बुलाया। कभी भी भारी होकर के रेस्ट पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए दादी ने तुमको बिठाया, थोड़ा परिवार के साथ ज्ञान का चिटचिट करके हल्का करे, अभी जाओ तुम जाके सो जाओ। ये देखो कौन करेगा ऐसा प्यार। ये आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये एक अंदर नियत की बात है, जो आप आत्मा को कोई भी हालत में इसको हल्का करना चाहते हैं। ये प्यार है ना, प्यार, डोंट माइंड, डोंट वरी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम, ये प्यार है। नहीं तो अंदर से मैं कहूंगी इतनी एक नरम सॉफ्टनेस या स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी रहे कि हम बेबीज को हैंडल करें। आत्मा है क्या, बेबी है ना, बाबा की बेबी है ना, कुछ भी हो जाए बेबी को प्यार देंगे ना, नो प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जब ईश्वर का स्नेह हमारी वृत्ति से, दृष्टि से, स्मृति से प्रत्यक्ष होता है ना, तब औरों को खींच होंगे, हम आवे, हम नजदीक आवे, अपनापन महसूस होगा इनको, और हम इन आत्माओं को माला में पिरो सकेंगे। नहीं तो यही हमारा काम है। लेकिन प्यारा बनना है, ये कैपेसिटी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न हमारे प्यार में है हमारा देह का भान। हमने प्यार को मोह समझ लिया है, प्यार को कंफर्ट समझ लिया है, साधन का कंफर्ट समझ लिया है। नहीं, पहले मैं कंफर्टेबल रहूं फिर मैं बाबा को याद करूं। अरे बाबा की याद में ही आपको राहत मिलेगी। सभी को ये तो अनुभव होगा ना, जब आपको कुछ ठीक नहीं लगता है सवेरे, लेकिन जब मुरली में आते हैं, मुरली सुनते सुनते ठीक हो जाती है ना तबीयत, है ना, वो जो बादल था हट जाता है ना मुरली सुनते सुनते। तो ईश्वर को प्यार करना है, माना मुरली से प्यार होना चाहिए, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, परिवार से प्यार होना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं मैं तो ठीक हूं, अकेली तो मैं ठीक हूं, बाबा से प्यार करती हूं, लेकिन संगठन में आती हूं तो संगठन प्रॉब्लम होता है। भाई क्या प्रॉब्लम होता है, बस औरों का स्वभाव संस्कार। तो जो प्यारा बनना चाहता है वो पहले अपनी कमजोरी को देखेगा, औरों की कमजोरी को नहीं देखेगा पहले, क्योंकि अपनी कमजोरी बनती है अपनी वीकनेस की फाउंडेशन। प्यार है तो फुहारा है, आप दे रहे हैं प्यार, नो प्रॉब्लम। अंदर से प्यार की कमी है, कुछ कमजोरी है, तब सेंसिटिव नेचर होते हैं। तो प्यार का ये प्रूफ है कि अपने संस्कारों को कुट कुट करके देखो। दादियां ये करती थी ना, मुझे याद है एक बारी ब्रजेंद्र दादी क्लास में बताया था, मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे कितनी ऑनेस्ट है हमारी दादियां अपने पुरुषार्थ में, जैसा पुरुषार्थ करते हैं बाबा के सामने वो क्लियर चार्ट रखते हैं। ऐसे नहीं कि काम चलाओ वाला पुरुषार्थ या दिखावा पुरुषार्थ, हठ योग का पुरुषार्थ, ऐसे नहीं। तो दादी ने जब क्लास शुरू किया था उस समय तो कहते कल रात को मैं अपने संस्कारों को 2 बजे तक कूट कूट के दिख रही थी, कौन से संस्कार अभी तक पुराने रहे हुए हैं अंदर। किसने ये मेहनत की है? अभी तो सभी को चांस है ना ये मेहनत करने का। जिसके अंदर एक दिल का स्नेह, दिल की स्नेह की भावना बनी रहती है ना, वो कभी किसी और को दोषी नहीं बनाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली वो खुद दोष अपने आप ऊपर ले लेगा। मुझे याद है दादी के सामने, दादी जानकी जी के सामने किसी ने झूठ बोला था तो बहुत दादी को पता था झूठ बोल रहा है, कुछ कुछ सिचुएशन था और झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रहा था। हमको भी पता था ये झूठ बोल रहे हैं, तो दादी जैसे वो बोलने लगे दादी चुप हो गई, दादी ने कुछ बोला नहीं। हम बाजू में बैठ रहे थे और हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, हमने सोचा दादी रिएक्शन क्यों नहीं कर रही, शांत क्यों हो गई है। तो जब वो व्यक्ति चली गई तभी मैंने दादी को पूछा, दादी आप इतने शांत क्यों हो गए, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो दादी ने बोला कि दादी अपने आप को देख रही थी, क्या कमी है जो इस आत्मा दादी को सच नहीं बोल पाई। देखो, समझ में आई बात? प्यार क्या है कि मेरा रूप ऐसा बने जो किसी को मेरी कंपनी में शीतलता महसूस हो, सेफ्टी महसूस हो, वो खिल जाए, वो डरे नहीं मेरी कंपनी से। समझ में आई बात? मुझे इतना उस समय अंदर से लगा कि देखो दादी उसके बारे में नहीं बोल रही है, वो खुद क्या खुद को देख रही है कि मेरी धारणा में क्या कमी है कि ये आत्मा मेरे सामने सत्य झूठ बोले, कि वो सत्य नहीं बोल पाई। मुझे याद है एक माता थी, क्योंकि विदेश में जब होते हैं तो ऐसे झाड़ में हैंड्स तो नहीं मिलते, हैंड्स बनाने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत से हैंड्स बनते हैं। जब दादी जानकी जी लंदन आए थे तो गिनने चुनने थे, 10-12 लोग ही थे क्लास में, धीरे धीरे एक एक के ऊपर पुरुषार्थ करके, एक एक के ऊपर। हमको याद है जब केन भाई चार्ली भाई आए थे तो हिप्पीज थे, पता है ना हिप्पी कल्चर कैसा होता है, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, ऐसे वो हिप्पी कल्चर था उस जमाने में 75 में। तो वो जब दरवाजे पे आए थे तो उस ड्रेस पे आए थे, लेकिन दादी ने ऐसे नहीं कि क्या है, अरे इनसे बदबू आ रही है, कैसे कपड़े पहन के आए हैं, अरे इनको भगाओ जल्दी, ऐसी वृत्ति नहीं थी। आत्मा है ना, बुलाया अंदर, कोस कराया, प्यार किया, और देखो आज दोनों देश चला रहे, रीजन चला रहे हैं। तो प्यार माना आप ऊपर ऊपर का नहीं देखेंगे, आपको किसी की जिगरी नब्ज आप पकड़ सकेंगे। तो मुझे याद है दादी क्या करती थी, कभी कभी नई देशों में सेवा शुरू होती थी तो दादी जी कई ऐसी गिनी चुनी माताएं थी जो बहुत सर्विसेबल थी, भल घर गृहस्थ में रहती थी लेकिन इनका घर भी सेंटर जैसा होता था, एकदम पक्की थी। तो दादी इनको ट्रेनिंग दे करके दादी माताओं को भेजती थी नए नए देशों में, टीचर के साथ भेजती थी माताओं को। तो एक बार एक माता को भेजा था तो वो माता वापस आई 3-4 वीक के बाद और काफी नाराज हुई थी। तो जब दादी से मिली तो काफी नाराज थी तो थोड़ा जोश में बोलने लगी, दादी क्या है, मुझे किस जगह पे आपने भेजा, मैं अकेली थी, मेरे पास कोई हैंड्स नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लंबी चौड़ी बात, लेकिन बहुत अपसेट थी। दादी ने बहुत उसको प्यार से मनाने की कोशिश किया बहन को बताया कि देखो दादी ने आप में विश्वास रखा है ना, दादी का पूरा विश्वास था कि आप जाके हैंड्स बनाएंगे जैसे दादी ने आपको हैंड्स बनाया। लेकिन बेचारी का दिल नहीं मान रहा था, उसके दिल में जो भरा हुआ था वो सब बाहर हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्लास के बाद दादी ढूंढ रही थी कहाँ है वो माता। तो मैंने बोला दादी आई तो नहीं है, कहते जांच करो कहाँ है। तो मैंने फोन किया तो घर में, घर पे थी, कहते मुझे आज बुखार हो गया है। मुझे पता चला क्यों बुखार हुआ है। तो जब दादी के पास गए, दादी को बताया कि दादी वो आई नहीं है, कहते मुझे बुखार है, तो दादी ने बोला ठीक है चलो हम उसके घर पे चलते हैं। हाँ? बोला दादी देखो ये करना है, चलो ये पूरा करके हम चलते हैं। दादी जरूरी नहीं है वो कल आएंगी क्लास में। नहीं, दादी को उस आत्मा को इतना प्यार देना है कि वो भूल जाए, जो भी उसने दादी को बोला था वो सब कुछ भूल जाए, इतना प्यार दादी उसको देना है। अभी आपके पास ईश्वर स्नेह का इतना स्टॉक है जो आप कोई भी व्यक्ति के भूल को भी मिटा सकते हो उसकी स्मृति से, या अंदर नोट पैड पेन है, तुम ऐसा है, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा है, ये क्या है? समझ में आएगा? बाबा देखो ना बच्चों के सामने वंडरफुल है, बाबा शिक्षा देता है, श्रीमत देता है, उस समय प्यार की लहर में आकर के हाँ बाबा हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, फिर दो दिन के बाद रिवर्स में गाड़ी जाती है, प्रॉमिस टूटता है, झूठ बोलते हैं बाबा के सामने, फिर भी बाबा भोला बन जाता है ना बच्चों के सामने, क्योंकि अभी धर्मराज का पाठ शुरू नहीं हुआ है, बाप है ना। तो बाप का काम यही है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, कुछ भी हो जाए ठीक है छोड़ दो, अभी ये नहीं, अभी दिल खोल दिया ना बता दिया, अभी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कितनी दुआएं मिलती है। तो प्यार ईश्वर की स्नेह उसका प्रत्यक्ष रूप प्रैक्टिकल में अहिंसा। हमको याद है एक यूथ कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप था, तो हर दिसंबर में जो इंटरनेशनल यूथ फोरम होता था, शुरू से लेकर के हमारी रिट्रीट दादियों की सिटिंग रूम में होती थी। एक दादी की सिटिंग रूम में जाओ, दूसरे दादी की सिटिंग रूम में जाओ, तीसरे, और ऐसे दिन बीतता था, पिकनिक पे जाओ दादियों के साथ। तो धीरे 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 फिर एक बाद एक के बाद दादी सूक्ष्म पार्टी में, एडवांस पार्टी में चले गए। तो पर दादी जाने के बाद हम रुक्मिणी दीदी के साथ बैठे थे, तो हमने पूछा था, थोड़ा रुक्मिणी दीदी स्टोरी सुना रहे थे परदादी के बारे में, तो मुझे एक कहानी बहुत टच हुई कि एक दिन गुरुवार का दिन था और यहां पर ही थे, क्योंकि परदादी का कमरा यहां इंद्रप्रस्थ में है ना, नंबर रूम पहला कमरा वो निर्मल शांता दादी का कमरा था। तो रुक्मिणी बहन भोग का दिन था तो बाल धुलाई किया था, तो वहां जो छोटा सा क्या क्या कहेंगे पैटियो अंदर है, तो वहां बैठे थे और बाल ऐसे सुखा रहे थे और थोड़ा हाँ कोम से थोड़ा बना रहे हैं बाल को, तो बाल तो गिरते हैं, लंबे होते तो गिरते हैं नीचे। तो दादी अंदर आई, दादी ने बोला अरे रुक्मिणी ये देखो तेरे बाल इतने लंबे चौड़े हैं और यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चकलियां, वो छोटी छोटी क्या पंछी, हाँ इतने पतले पतले उनके पाँव होते हैं, तेरे लंबे बाल इनके पाँव में आ जाएंगा तो वो कैसे उड़ेंगी। ये देखो ये क्या है, वेरी डीप मैं कहूंगी सेंसिटिविटी कि मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे। मेरे कर्मों के आधार से किसी को कष्ट न मिले, ये है ईश्वरीय स्नेह की शक्ति, बिल्कुल अहिंसक बना देती है। समझ में आई बात? एक छब्बी बन रही है, आप प्यार की छब्बी कैसी होनी चाहिए, मोटे रूप से प्यार नहीं, हम समझते बस किसी को खुश करना, लेकिन ये तो स्वार्थ वाला प्यार है। वो व्यक्ति हमारे से खुश रहे इसलिए हम उसको खुश कर रहे हैं, ये तो पूरा खेल है, संबंधों का खेल है। और इस खेल में ना हम खुश रहते हैं ना वो सामने वाली व्यक्ति खुश रहता है, ना हम संतुष्ट रहते हैं ना वो सामने वाली व्यक्ति संतुष्ट रहता है। बड़ी दादी का प्यार तो बहुत एफेक्शन स्नेह भरा प्यार था। हम बचपन में थे तो बड़ी दादी हमको देखते थे, आइसक्रीम मंगाती थी, चलो पिकनिक पे जाए, फिर हमको भाकी पहनती थी। लेकिन हम जब दादी जानकी के पास आए तो दादी जानकी का प्यार ऐसा नहीं था। दादी जानकी का प्यार लॉ था। कहते ना लव एंड लॉ, लॉ इज लव इज लॉ। इत्तफाक से दादी हमको पूछती थी, तुम ठीक हो? उनको चेहरे से तो सब कुछ पता चलता था, लेकिन बड़ी दादी जैसे ऐसे ऐसे प्यार नहीं करती थी। दादी का प्यार सत्यता था। जब भी दादी कुछ डायरेक्शन देती थी और हमारा मुंह थोड़ा सा भी बदले ना, मुंह क्यों, चेहरा क्यों बदला, आउट, चेहरा क्यों, अच्छा दादी नहीं, दादी नहीं बोलेंगी अभी, कुछ भी नहीं बोलेंगी, नहीं 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 दादी बोलो बोलो बोलो, हम करेंगे, हम चेहरा नहीं बदलेंगे, आप बोलो बोलो हम करेंगे। और मैंने ये कहानी तो बहुत बारी सुनाई है, जब हम कार में जा रहे थे, शायद आपने सुनी होंगी ये, माउंट आबू से नीचे आ रहे थे, तो उस समय मुझे तो जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था और दादी तो खाती है पीती है, ईमेल पढ़ती है गाड़ी में, और फिर मुझे बोला आप नोटबुक पेन निकालो, मैं डिक्टेशन कराती हूँ, और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने तो बीच में कुमार को बोला आप गाड़ी रोको, बाहर निकलती हूँ। थोड़ा दो तीन गहरा सांस लिया, आधा नींबू लिया, थोड़ा अपने आप को सेट किया। फिर जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो दादी ऐसे देखने लगी मुझे, तुमको ये नहीं होना चाहिए। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला दादी आप इतने हमारे से बड़े हो, आप खाते हो पीते हो सोते हो पढ़ते हो गाड़ी में, आपको कुछ नहीं होता है, हमको क्यों होता है इतना, मुझे क्यों इतना चक्कर वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। और दूसरी बात, हाँ कोई और होता तो वो पूछता आपको ग्लास पानी चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं मुझे पूछते हैं, आप ऐसे ही बोलते हो कि तुमको ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे छोटा बच्चा रूठता है, वैसी थी मेरी स्थिति उस समय। तो दादी हंसने लगी, मैंने बोला आप बताओ ना दादी क्या है आपकी सीक्रेट, आपको क्यों नहीं पेट अपसेट होता है, या यहां पे आपसे चक्कर क्यों नहीं आते आपको। कहती ठीक है दादी बताती है, आप लोग छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, शब्द वेस्ट करते हैं ना। तुम लंच को क्या किसके साथ गपशप कर रही थी, दादी ने देख लिया था, बाबा की याद में तो भोजन नहीं स्वीकार किया था उस दिन। तो कहती है छोटी छोटी बातों में जहां पे टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, वो वेस्टेज का एक बोझा पड़ता है आत्मा में, और उस बोझ को फिर आपको ही भोगना पड़ता है छोटी छोटी बातों में। आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे चक्कर आएंगे, सवेरे उठेंगे बुखार जैसा लगेगा, पता नहीं है उसका कारण क्या है, ये सारा बोझ व्यर्थ का बोझ का भोगना है। ये था दादी जानकी जी का प्यार। मुझे उस समय बहुत दिल से थैंक्स निकला, क्योंकि दादी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थी, अपने ऊपर अपनी देह को त्याग करके अशरीर, खुद को अशरीर बनाना, खुद की जो भी बीमारी है उससे पार जाना, दादी इसमें एक्सपर्ट थी। तो वो एक एक बीमारी का रग समझती थी, ये था प्यार। अभी हर एक व्यक्ति हमारे लाइफ में है, उनकी भावनाएं अलग अलग प्रकार से प्रत्यक्ष होती है ना। तो जब भी हम किसी की भावनाएं को समझते हैं, तो जिस तरीके से वो प्यार देना चाहते हैं वो भी हम समझते हैं, तभी हम वो प्यार स्वीकार कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझो मेरे मन में बस मुझे बड़ी दादी जैसा कोई प्यार करे, मुझे वही प्यार है, और कोई मुझे ऐसा प्यार नहीं करे, दादी जान की मुझे ऐसा, तो फिर मुझे लगेगा अरे दादी मुझे क्यों बार बार रिजेक्ट करती है। लेकिन आपने दादी की भावना समझी नहीं। तो ये एक मेहनत है प्यार, ईश्वरीय स्नेह एक है समझने की कोशिश करता है। पहले कुछ चीज को समझना है तो साक्षी होकर के देखना है पहले, जो है जैसी है पहले साक्षी होकर के देखो, ऑब्जर्व तो करो, अपना टूटू नहीं चलाओ, पहले उस चीज को जिस रूप में क्या हो रहा है ऑब्जर्व तो करो, समझो बात पहले, और फिर जिसमें ईश्वरीय स्नेह की भावना होती, सीखने की भावना होती है। मैंने ये देखा दादी जी में बहुत था ये। आप सोचो भिन्न भिन्न देशों में सफर करना, भिन्न भिन्न कल्चर्स में, भिन्न भिन्न भाषा वाले के साथ एडजस्ट करना खुद को, दादी ने बहुत कुछ सीखा है। और अपने आप को एडजस्ट करके, मोल्ड करके, दादी ने खुद में परिवर्तन लाया और औरों में भी परिवर्तन लाई थी। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। हम ऊपर ऊपर से बोलते हाँ बाबा आई लव यू, बहुत बोलने से में बहुत इजी है, लेकिन आपका प्यार कितना डीप है, या ऊपर ऊपर से खुश करने वाला प्यार है? डीप जाना चाहिए नहीं? ठीक है, ओके। तो आप लोग रिट्रीट करने के लिए नहीं आए हैं, बाप समान बनने के लिए आए हैं, क्योंकि जिसके साथ प्यार है, सच्चा दिल का प्यार है, ऐसे नहीं स्वार्थ वाला प्यार जो समय को देख करके तब प्यार करता है, जब काम होता है तब प्यार करते हैं, नहीं, ये एक प्यार बनी रहे, उसके लिए एक वार्तालाप बनी रहे। बाबा के साथ बातें करो ना, और बातें करने में सुनने का भी गैप रखना होता है, पता है ना? जब किसी के साथ वार्तालाप होता है तो आप थोड़ा बोलते हैं वो सुनते हैं, वो थोड़े बोलते हैं आप सुनते हो ना, आपका सारा टाइम टूटू तो नहीं चलता है ना। तो जब हम बड़े बाबा के सामने जाते हैं ना, सार रूप में बाबा को बता दो, फिर बुद्धि को शांत करके सुनो, बाबा क्या देना चाहता है मुझे। एक दिल की बात है, बाबा की भावनाएं स्वीकार करो। उस समय दृष्टि से बहुत कुछ पता चलता है। हम जब बाबा की दृष्टि लेते हैं, दृष्टि में इतना कुछ है। देखो बाबा की दृष्टि में बाबा ने पहले तो हमको पहचाना है ना, राइट? हमने बाबा को नहीं पहचाना है, बाबा ने इस डायमंड को पहचाना। तो बाबा की दृष्टि में हमारी संपन्नता है। तो जब हम बाबा की दृष्टि लेते हैं तो वो संपन्नता की भावना हमारे अंदर प्रकट होती है। समझ में आई बात? लिए जब भी कुछ ब्लॉकेज या बैरियर कुछ भी है दिल में, नो प्रॉब्लम, बता दो। लेकिन बुद्धि शांत करके, बाबा की दृष्टि लेकर के, जो उस समय भावना मिल रही है बाबा से, वो ले लो। इसलिए बहुत रिलैक्स्ड माइंड रखना पड़ता है। बाबा बैठा है ना, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा करण करावन है यार, है क्या बाबा अपने बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचने देंगे? तो रिलैक्स, कुछ सीखना है यहाँ पे, कुछ अच्छे कर्म के हिसाब किताब, चुप तो हो रहे, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। क्यों, क्या शब्द नहीं निकलना चाहिए मुख से, वो पूरे देह भान के शब्द होते हैं, जो हम ना बाप की भावनाएं, शिक्षाएं, ना ड्रामा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और हमने ये बात देखी है, दादी ने, दादी जानकी ने, ड्रामा उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, दादी ने कभी ड्रामा की बात को टाला नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे सामने कोई दादी को तिरस्कार करे, अपोज करे, रिजेक्ट करे, ना बोले, मुंह में ना बोले, तो भी ठीक है भाई। तो हर एक को अपने दिल से देखना है भी। आप आए हो यहां पे, चलो रिलैक्स होने के लिए, फिकर से दूर होने के लिए, लेकिन अपनी दिल की सफाई करने के लिए भी आए हैं ना, क्योंकि प्योर लव चाहिए ना, प्योर लव के लिए एक फाउंडेशन बनाना होता है अंदर, ऑनेस्टी का, सिंप्लिसिटी का, संतुष्टता का। तो ऐसा लक्ष्य रखो कि आपकी प्यार में, आपकी भावनाएं में, आपकी वृत्ति में ऐसी शुद्धता हो कि स्वयं भगवान आपके प्रति आकर्षण हो जाए, बार बार बाबा आपको याद करे, तभी फिर आपको ये फीलिंग आएंगी कि आपकी याद निरंतर है दिन में। क्योंकि एक जब एक दूसरे को याद करते हैं तो वो नेचुरल एनर्जी फ्लो रहती है ना, तो ऐसा खुद को लायक बनाना है, इसलिए आप यहां आए हैं, न केवल रिट्रीट करने के लिए, लेकिन बाप समान बनने के लिए। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बाबा देख रहा है, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? जी किसी के संस्कार, किसी के नेगेटिव संस्कार दिखाई देते हैं और आप ही दुखी होते हैं उसको देख के। नहीं, क्या है, ये है बुद्धि की बात। हमको अपनी बुद्धि को सतोगुनी बनाना है और बुद्धि को ट्रेनिंग देना होता है। आपकी बुद्धि एक किचड़े का डब्बा तो नहीं है ना? किचड़े का डब्बा है, तमोगुनी है, तो आप सभी की तमोगुनी बातें पिक करेंगे। बुद्धि जब सतोगुनी है तो चलो 99% भी खामियां हैं, लेकिन आपको 1% दिखाई देंगे। तो सतोगुणी बुद्धि जो विशेषता है, क्वालिटीज है, गुण है, जो अच्छा है, उसको खोज करती है। तो ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए खुद के ऊपर। पहले क्या है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं ब्राह्मण जीवन में, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमारी प्राप्तियों को देखने के लिए भूल जाते, क्या सीखा है वो नहीं ध्यान में देते, औरों को क्या मिला है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं और हम खुद के लिए एक सतोगुणी दृष्टि रखते हैं कि बाबा मुझे क्या बना रहा है खुद के प्रति, तभी औरों के प्रति वो दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए हर रोज दो चीजें करनी चाहिए, एक है प्राप्ति का लिस्ट बनाना है और दूसरा अपनी संपन्नता के साथ कंपेयर करके देखना है मैं कहां तक हूं पहुंची हूं। ये जब अंदर के तरफ एक आंख होती है ना, तो बाहर के तरफ एक रहम की आंख रहती है। क्योंकि दादी क्या बोलती थी हमको, बेचारा परवश है, कुछ प्रभाव काम कर रहा है, कोई आत्मा किसी को दोषी नहीं बनाना है। तो बुद्धि को सतोगुणी बनाना है, पढ़ाई का बहुत ध्यान रखना है। इसमें पढ़ाई में कमी होती है ना, तब बुद्धि का बर्तन साफ नहीं रहता है, क्योंकि नॉलेज इज विजडम, विजडम इज लाइट। आप हर चीज समझ से देख पाएंगे फिर, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारा मदार है बुद्धि पे, बुद्धि की क्वालिटी के ऊपर। इसीलिए कुट कुट करके, मुझे याद है एक बारी क्या हुआ, रिट्रीट सेंटर में उनका टाइमिंग्स होता है, जब रिट्रीट वाले आते हैं तो इनको एडवांस में ईमेल भेजते हैं, कहते हैं 12 से 2 बजे तक भोजन रहता है, आप आएंगे तो आप 12 से 2 बजे आओ ताकि आपको भोजन मिले, या आप 4 बजे के बाद आओ तो आपको चाय नाश्ता मिलेगा। तो एक बहन आई थी और वो आई थी 2:30 बजे, पूरा किचन बंद हो गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था, तो पहुंची इतना रश में, तो रिसेप्शन डेस्क पे आई तो ऐसे डिमांड कर रही थी, मैं बहुत दूर से आई, मुझे अभी खाना चाहिए। और वो बेचारी बहन रिसेप्शनिस्ट थी, वो मुसीबत में पड़ गई, क्या करे, अरे किचन में फोन करे, कोई फोन ना उठावे, सभी तो निकल गए थे किचन से, और किचन कितना दूर, रिसेप्शन कितना दूर, और ये कहते हैं ये बाबा का घर है, क्या मुझे कुछ खाना नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो ये बेचारी थोड़ी रिसेप्शनिस्ट टेंशन में आ गई, तो उसको सीरियस बने, आपको ईमेल भेजा था, अभी आपको 4 बजे रुकना पड़ेगा, आपको चाय चाहिए तो ऊपर का डाइनिंग शायद खुला होगा, आपको थोड़ा चाय अपने आप बना लेंगे। फिर भी इस बहन को थोड़ा वो लगा कि क्या मुझे डिसरिगार्ड कर रही है ये। फिर दादी जी आए थे उस दिन शाम को 6 बजे आ गए थे, तो ये बहन खास दादी को मिलने के लिए गई, दादी आज मैं आई ना 2:30 बजे, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, और ये रिसेप्शनिस्ट बहन ने, उसकी वृत्ति मेरे प्रति ठीक नहीं थी, उसने मेरे साथ ऐसा वैसा व्यवहार किया। तो दादी अच्छा, लेकिन ये तो बहन बहुत अच्छी है, इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, दादी ने पूरे गुणों का लिस्ट बताया उसको, इतना उस बहन को पिघलाया कि वो बहन खुद आकर के रिसेप्शनिस्ट को सॉरी बोल के गई। समझ में आई बात, ये हमारा धंधा है, कुछ भी हो जाए ना किसी के स्वमान में किसी का कुछ गिराना, किसी को गिराना ये पाप है, किसी की डिग्निटी को बढ़ाना, स्वमान बढ़ाना ये पुण्य है, और ये हमारा धंधा है ब्राह्मण होकर के, ये प्यूरिटी का व्यवहार है। समझ में आई बात, तो जब आप प्यूरिटी को एक धर्म समझेंगे ना, तो तब ये आदतें ऑटोमेटिकली आएंगी। ओके, थैंक यू, ओम शांति। प्रभु का ध्यान।